नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल झारखंड के हजारीबाग पहुंचा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट शाफ्ट रॉकेट सौंपा। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की नई स्पेक्ट्रम आवश्यकता को पूरा करने और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रवाह के प्रभाव से ओडिशा में अगले कुछ दिनों में कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावना। और टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 57 रन का लक्ष्य दिया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा में सदस्य भाग लेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को आरंभ हुआ, जबकि राज्यसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सांसद ओम बिरला ध्वनिमत से नई लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। विपक्ष ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन विपक्ष ने सदन में मत विभाजन की मांग नहीं की। श्री ओम बिरला ने दोबारा सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद करते हुए कहा कि संसदीय मूल्यों और लोकतांत्रिक परम्पराओं को समृद्ध करना उनकी प्राथमिकताएं होंगी। नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की एक टीम कल झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसएस स्कूल पहुंची। सीबीआई के अधिकारियों ने पेपर लीक से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर स्कूल के प्राचार्य से पूछताछ की। इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई उन्हें अपने साथ ले गई। प्राचार्य नीट परीक्षा के लिए हजारीबाग शहर के स्कूलों के समन्वयक थे। सीबीआई टीम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हजारीबाग की शाखा के अधिकारियों से भी पूछताछ की, जहां प्रश्न पत्र रखे गए थे। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने पहले कहा था कि पटना के खेमनीचक प्ले स्कूल से आंशिक रूप से जला हुआ प्रश्न पत्र जब्त किया गया था। ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए से प्राप्त प्रश्न पत्र से मेल खाता था और इसी प्रश्न पत्र की श्रृंखला हजारीबाग के कल्लू चौक स्थित ओएसएस स्कूल परीक्षा केंद्र पर भेजी गई थी। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूचियों की जांच करेंगे। मतदाता 25 जुलाई से 9 अगस्त के बीच इन सूचियों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। संशोधित मतदाता सूचियां 19 अगस्त तक प्रकाशित हो जाने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में इस वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। दिल्ली की एक अदालत ने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही धनशोधन से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में पेश किया। एक अन्य संबंधित घटनाक्रम में श्री केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी वो अर्जी वापस ले ली, जिसमें उन्होंने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में सभी के साथ बेहतर समन्वय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार खतरे बर्दाश्त न करने की नीति के अंतर्गत नशे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मध्यम दूरी का माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट शाफ्ट रॉकेट भारतीय नौसेना को सौंपा। एक रिपोर्ट।
शाफ्ट रॉकेट एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी है जिसे डीआरडीओ की जोधपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। ये रडार एक माइक्रोवेव ढाल बनाता है और रडार की खोजबीन को कम कर देता है। मध्यम दूरी के शाफ्ट रॉकेट में विशेष प्रकार के रेशों का संयोजन किया गया है। इस रॉकेट को जब अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तो यह दिखाई नहीं देने वाला सूक्ष्म मादल बनाता है जो काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
मोबाइल सेवाओं की निरंतरता तथा विकास के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की नई स्पेक्ट्रम आवश्यकता को पूरा करने और समाप्त हो रहे लाइसेंस के नवीकरण के लिए आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रखे गए थे। इस साल की नीलामी में 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में नीलामी की गई। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान में कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी 2024 पारदर्शी और मजबूत सतत आवंटन प्रक्रिया का हिस्सा थी। तेलंगाना में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी 3 दिन की हड़ताल समाप्त कर दी है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के 3 प्रमुख कॉलेजों में निर्माण कार्यों के लिए आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशालय को 200 करोड़ रूपये आवंटित करने वाले आदेश जारी करने के बाद हड़ताल समाप्त की गई। आज विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में एसोचैम द्वारा लखनऊ में बुधवार से 2 दिवसीय एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ साथ बैंकर्स और स्टार्टअप्स भी भाग ले रहे हैं। कल सम्मेलन के पहले दिन उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में एमएसएमई की बड़ी भूमिका होगी। जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास कॉन्क्लेव में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक बनाने में प्रशासन के स्थायी पर्यटन मॉडल विकसित करने के प्रयासों का उल्लेख किया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में पर्यटन उद्योग, फिल्म, व्यापार और यात्रा प्रबंधन एजेंसियों के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि क्षेत्र में कोविड महामारी के बाद पर्यटन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही है और विदेशों से आने वाले पर्यटकों में प्रतिवर्ष लगभग 300% वृद्धि हुई है। नई नीतियां, अनुकूल परिवेश, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने और सालों भर रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास से इसमें अपेक्षित सुधार आया है।
टूरिज्म सेक्टर को सफलता के नए शिखर पर ले जाने के लिए भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गंभीरता से प्रयत्न किया है और पूरी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है वह अनेक लोगों के कल्पना के परे है। पिछले 5 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं।
उपराज्यपाल ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और इससे जुड़े समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बदलाव के कई सुझाव दिए। श्री सिन्हा ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अधिकतम निजी निवेश के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दशकों बाद घाटे में बॉलीवुड की वापसी हुई है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कहा है कि शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस के मामले में चल रही जांच में इस कंपनी को वित्तीय धोखाधड़ी से बरी करने की खबरें गलत और भ्रामक हैं। उसने कहा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई अभी जारी है और इस मामले में कोई अंतिम निष्कर्ष अभी नहीं निकाला जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल चंदनवाड़ी बेस कैंप का दौरा कर श्री अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अमरनाथ यात्रा इस महीने 29 जून से शुरू हो रही है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत की और शिविर तथा यात्रा मार्ग में भोजन और ठहरने के प्रबंध, स्वास्थ्य देखभाल, संपर्क, स्वच्छता, बिजली और पानी की आपूर्ति और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। श्री सिन्हा यात्रा व्यवस्था की निगरानी रख रहे हैं और श्री अमरनाथ वार्षिक यात्रा से पहले प्रशासन, श्राइन बोर्ड, पुलिस और सुरक्षा बलों तथा अन्य पक्षों की तैयारियों का प्रत्यक्ष आकलन कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। इन क्षेत्रों में रविवार तक हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। कल से 30 जून तक झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है। इस बीच पश्चिम राजस्थान, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इन क्षेत्रों में यह तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। रही सुदिन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती प्रवाह के कारण ओडिशा के अलग अलग स्थानों पर अगले 3 दिन में तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज गजपति, रायगढ़, नवरंगपुर, कालाहांडी, बलंगीर, नौपाड़ा, मलकानगिरी और कोरापुट जिलों में कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। अफगानिस्तान के लिए 57 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 9वें ओवर में 60 रन बनाकर हासिल कर लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत तथा इंग्लैंड के बीच गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में मुकाबला होगा। विश्व कप फाइनल शनिवार को खेला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। 96 वर्षीय श्री आडवाणी को एम्स के जरा चिकित्सा विभाग में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। दुबई के सबसे पुराने कला संस्थान दुबई आर्ट सेंटर में इन दिनों भारतीय लोक और जनजातीय कला की मनमोहक प्रदर्शनी चल रही है। हुनर नाम से आयोजित इस प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न लोक कलाओं और जनजातीय कला विधाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है रवि कपूर।
धन्यवाद कनक। भाजपा सांसद ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने को अखबारों ने सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने लिखा है, कायम रही परंपरा, ध्वनिमत से बने लोकसभा अध्यक्ष, मोदी और राहुल ने दी बधाई। राजधान पत्रिका की टिप्पणी है, अध्यक्ष बनते ही ओम बिरला ने विपक्ष को किया हक्का बक्का, संविधान खतरे में का करारा जवाब, आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव पारित। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज होने को देशबंधु ने पहले पन्ने पर दिया है। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे नए आपराधिक कानून के बारे में राष्ट्रीय सहारा ने बताया है, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को थाने आने से छूट, अब होगी 0 एफआईआर। ऑनलाइन शिकायत, अपराध स्थल की वीडियोग्राफी। अमर उजाला ने लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, 50% भारतीय आलसी, नहीं करते शारीरिक श्रम। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पुरुष के मुकाबले महिलाएं ज्यादा निष्क्रिय, बीमारियों का ज्यादा खतरा, घर के कामों के कारण महिलाओं को खुद पर ध्यान देने का कम समय मिलता है। जनसत्ता ने लिखा है, 5 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाएगा मानसून, जल स्रोतों की दूसरी गणना की प्रक्रिया शुरू, गिने जाएंगे झरने भी, दैनिक जागरण में है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल झारखंड के हजारीबाग पहुंचा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्योर शाफ्ट रॉकेट सौंपा। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की नई स्पेक्ट्रम आवश्यकता को पूरा करने और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रवाह के प्रभाव से ओडिशा में अगले कुछ दिनों में कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।